श्लोक संख्या 38 3.38
धूम्रेणाव्यते वहिनः यथादर्शमलेन च यथावृतेनावृतः गर्भ तथा तेनाइदम् आवृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ओम ज्ञानति निरन्तरस्य ज्ञानञ्जनं शलाकय चक्षुर्विदितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं गुरुः तदाद्वयं ददाति स्वगुणानन्दं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीलितापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सार्वजातं सर्वनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वललिता श्रीविशाखान्तश्च ये कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौराकी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च उपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील गोपाल की जय। धूम्रेण आव्रियते वहिनः यथा आदर्श मलेन च यथा उर्वेनावृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। जिस प्रकार अग्निधुए से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इसका अर्थ यह है, एक सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर यह है, काम शत्रु से दिव्य ज्ञान ढका हुआ है। यदि हमारे पास दिव्य ज्ञान है, वो तो है, क्योंकि आत्मा क्या है? दिव्य। आत्मा मटेरियल से बना है क्या? आत्मा तो दिव्य तत्व से बना हुआ है, चिन्मय तत्व से बना हुआ है, भगवान का अंश है। तो आत्मज्ञान अर्थात कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। तो ज्ञान तो है, परंतु क्या है? ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? भगवान कह रहे हैं काम शत्रु से। काम शत्रु से दिव्य ज्ञान ढका हुआ है। तो इस श्लोक में भगवान उन विधियों का वर्णन कर रहे हैं जिनके द्वारा ये जो काम शत्रु है ये मनुष्य के ऊपर हावी हो जाता है। ऐसे विधियों का भगवान, ऐसे प्रक्रियाओं का भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं जिन प्रक्रियाओं के द्वारा ये काम शत्रु जो है मनुष्य के ऊपर हावी हो जाता है, दिव्य ज्ञान को ढक देता है और इस प्रकार से मनुष्य को पाप करने के लिए विवश करता है, कंपल्शन हो जाता है। तो ये काम शत्रु ऐसी कौन सी पद्धतियों का उपयोग लेता है, कौन से पद्धतियों से काम शत्रु मनुष्य के ऊपर आक्रमण करता है, दिव्य ज्ञान को ढक देता है, वो प्रक्रिया क्या है, उससे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और नित्य जीवन में नित्य उन प्रक्रियाओं से अलर्ट रहेंगे। ऐसे कौन से साधन है इस काम शत्रु के पास, जिन साधनों का उपयोग करके वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हमको पान दे, हमारे ज्ञान को दिव्य ज्ञान से ढक देता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
धूम्रेण आव्रियते वहिनः, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है, पहला शब्द धूम्रेण आव्रियते वहिनः, पहली पंक्ति, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत महत्व का श्लोक है ये। उत्तर चल रहा है कब से, सारे श्लोक उत्तर में ही है, अभी बहुत महत्व का उत्तर है। पिछले श्लोक में भी हमने उत्तर का कुछ पार्ट समझा, अभी एक्सटेंसिव आंसर और डिटेल आंसर। यहाँ भगवान तुलना कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं इस श्लोक में, तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं ज्ञान की अग्नि के साथ। पहला जो पंक्ति है हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, धूम्रेण आवृते आवृते वही नाम, तो ज्ञान वो अग्नि के जैसा है और काम शत्रु धुएं के जैसा है। ज्ञान कैसा है, अग्नि के जैसा है, और काम शत्रु धुएं के शत्रु। ये जो काम शत्रु है ये आरंभ में एकदम साधारण लगता है, एकदम प्रारंभिक अवस्था में कैसा रहता है, एकदम साधारण स्थिति में जो वर्णन किया गया है इस श्लोक में, एकदम साधारण स्थिति, अर्थात ये काम शत्रु की समझिए आप एकदम फर्स्ट स्टेज है। काम जागृत हो रहा है, काम शत्रु जागृत हो रहा है, एकदम फर्स्ट स्टेज है ये। पहले इसमें पहले उदाहरण में भगवान ने जो पहली तुलना की है उसमें काम शत्रु की एकदम आक्रमण की पहली स्टेज है। काम शत्रु आक्रमण करता है हमारे दिव्य ज्ञान के ऊपर, तो दिव्य ज्ञान के ऊपर आक्रमण करने की ये एकदम प्रारंभिक अवस्था समझिए, एकदम साधारण अवस्था है। तो यहां पे भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अग्नि के समान ज्ञान है और धुएं के समान काम शत्रु। तो जिस समय लकड़े को आग लगाई जाती है, आपने देखा होगा ऐसे आग लगाती है तो शुरुआत को क्या उत्पन्न होता है, शुरुआत को धूर होता है ना, कोई भी लकड़े को जलाओ पहले धूर होता है, धूर होता है, धूर होता है, फिर और धूर होता है, फिर धूर बढ़ता है धीरे धीरे, अग्नि भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, धूर भी बढ़ता है। जब शुरुआत को धूर हुआ, थोड़ा धूर था, थोड़ा अग्नि था, हमने उसको यदि मान लो ध्यान नहीं दिया तो और धूर बढ़ जाता है, पर शुरुआती अवस्था होती है एकदम थोड़ा थोड़ा धूर। यानी यहां पे जो भगवान कह रहे हैं, अग्नि जो है धुएं से ढकी हुई है, उसका अर्थ यह है कि शुरुआती अवस्था में अग्नि एकदम कम रहता है और धुआं बहुत ज्यादा रहता है, अर्थात दिव्य ज्ञान इतना होता है इतना सा, और उसको काम शत्रु ने पूरी तरह से ढक लिया होता है, कामनाएं डिजायर्स कामनाएं, ज्ञान इतना सा और कामनाएं इतनी सारी, ज्ञान खसखस के दाने के इतना और धुआ पहाड़ के उतना, ये शुरुआती स्थिति होती है, ये पहली स्थिति होती है हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।
श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुल्लिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी तुलना धुएं से आवृत अग्नि के समान होती है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मत बोलिए प्रभु जी, ज्यादा मत बोलिए, थोड़ा, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी जब करेंगे कभी नहीं करेंगे, है कि नहीं, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा जो स्पार्क है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, उस समय ये थोड़ी चिंगारी है और धुरा बहुत, धूर बहुत है, धूर बहुत ज्यादा है, परंतु चिंगारी है, थोड़ी अग्नि है, आग है। रूपा जी कह रहे हैं वो जो आग है उसकी रूपा जी विशेष शब्द कहते हैं, अनुभव गम्य, कृष्ण भावना भावित से अनुभव गम्य है, अर्थात हो सकता है कि वो छोटी सी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की चिंगारी है, वो छोटा सा जो अनुभव है, हो सकता है वो बड़ा भी हो जाए। परंतु पहली अवस्था में, यहाँ भगवान जो वर्णन कर रहे हैं, पहली अवस्था में ये है कि धुआ अग्नि को पूरी तरह से आच्छादित किया हुआ है। परंतु आप ये समझिए कि जहां जहां धुआ है वहां वहां है कि नहीं, बताइए, कितना भी काम शत्रु प्रबल होने दीजिए, लेकिन वहां पे चिंगारी होना ही चाहिए, बिना चिंगारी का धुआं नहीं हो सकता। धुआं है, काम शत्रु है, तीव्र है, बहुत है, परंतु क्यों है, क्योंकि चिंगारी, अर्थात कहीं ना कहीं चिंगारी है, परंतु प्राथमिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में इस चिंगारी का अनुभव नहीं होता है, धुएं में खेलते रहते हैं, है कि नहीं, अर्थात कामनाओं में ही खेलते रहते हैं, कामना है, इच्छा है, चाहिए चाहिए, ये अटैचमेंट, आसक्ति, आकर्षण, ये सब कुछ इसी में ही खेलते रहते, शुरुआती अवस्था होती है, ये चिंगारी का अनुभव नहीं होता है, ज्ञात नहीं होती है चिंगारी, उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी नहीं होता है। चिंगारी अर्थात दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान इतना भी होगा अंदर इनबिल्ट तो भी उसका अनुभव नहीं होता है, दिव्य ज्ञान का थोड़ा भी अनुभव नहीं होता है, होता जरूर है दिव्य ज्ञान पर अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति क्यों नहीं होती है, क्योंकि धुएं से ढका हुआ है, और धुआं अर्थात क्या, काम, धुआं अर्थात कामना, इतनी सारी कामना। सो यह अवस्था लगभग कृष्ण कॉन्शियसनेस के या कृष्ण भावना भावित होने की शुभारंभ की अवस्था, शुरुआत की अवस्था, अर्थात यहाँ पे शुभारंभ हो सकता है, है? तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, काम शत्रु बहुत बड़ा है धुएं के जैसा है, और दिव्य ज्ञान चिंगारी के जैसा है, और प्राथमिक अवस्था में तो ये जो दिव्य ज्ञान है, जो छोटा सा अग्नि है, इतना सा, इस अग्नि का अनुभव भी नहीं होता है। चिंगारी का कभी किसी को चटका लगता है, हाथ कितना भी पास में ले जाओ ऐसा चटका लगता है, अनुभव नहीं आता है, अनुभूति नहीं होती है। चिंगारी जैसा दिव्य ज्ञान है परंतु अनुभव नहीं होता है, प्रारंभिक अवस्था में धुआ ही धुआ होता है, काम शत्रु इतना प्रबल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, ऐसी परिस्थिति में अग्नि को जो धुआ, जिस प्रकार धुआ अग्नि को ढक सकता है, धुआ अग्नि को ढक जरूर सकता है परंतु अग्नि के प्रभाव को कम कर सकता है, अग्नि के प्रभाव को या अग्नि की शक्ति को कम कर सकता है, कम नहीं कर सकता। अग्नि को ढकेगा जरूर, कवर कर देगा, ढक देगा, लेकिन अग्नि के प्रभाव को या अग्नि के शक्ति को कम कर सकता है? जरा उंगली उसके ऊपर रख के देखिए, बहुत धुआं है, बहुत धुआं है, बहुत धुआं है। आप सोचेंगे अग्नि है नहीं, अग्नि क्या है, इतना सारा धुआं है, कहां अग्नि है। हाथ लगा के देखिए क्या होगा, चटका लगेगा। इसका अर्थ यह है कि धुआं कितना भी होने दीजिए, अग्नि के प्रभाव को या अग्नि के शक्ति को कमजोर नहीं कर सकते। अब इससे क्या समझ में आता है हमारे, अग्नि से धुआं है, धुएं से अग्नि नहीं है। आपने धुआं लगाया और फिर अग्नि है, ऐसा हुआ? क्या किया? अग्नि से धुआं है। इसका सादा सिंपल उत्तर यह है, धुआं कितना भी बड़ा होने दीजिए, अर्थात कितनी भी कामनाएं होने दीजिए, कितनी भी, कितना भी कामी व्यक्ति होने दीजिए, कितना भी कामी व्यक्ति, कितना भी कामी व्यक्ति, उसके अंदर चिंगारी है और वो प्रबल है, प्रभावित करने वाली है। कभी ये ना सोचे कि अरे ये तो कामी है, इससे क्या बात करें कृष्ण परमेश्वर, कर सकते हैं, तरीके अलग अलग हैं, प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, मार्ग अलग अलग हैं, कर सकते हैं, परंतु यह निश्चित बात है कि काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रबल हो, फिर भी कृष्ण कॉन्शियसनेस अंदर छिपी रहती ही है, छिपी है, दबी है। कृष्ण भावनामृत या दिव्य ज्ञान अंदर दब, कितना भी अज्ञानी मनुष्य है ना, वो After all, मनुष्य की बात हो रही है, मनुष्य है ना, तो कितना भी कामी होने दीजिए, कहीं दबा हुआ है अंदर ज्ञान, कृष्ण कॉन्शियसनेस चिंगारी के रूप में अंदर है, है ये? तो इसी प्रकार से यदि लकड़े पे आग लगी हुई है, लकड़े को जलाया है, धुआं बहुत बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, तो क्या करेंगे, पंखे से जोर से हवा मारो, क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित होगा तो धुआं जाएगा, धुआं जाने से अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा। क्या करना होगा, कोई व्यक्ति बहुत कामी है तो हम उसकी कामनाओं को छोड़ने के चक्कर में नहीं लगना चाहिए, उसको ऐसा नहीं बताना, कामनाएं छोड़ो, इच्छाएं छोड़ो, त्याग करो, वैरागी बन जाओ, नहीं होगा। जैसे अग्नि और धुआं है, धुएं को हटाने से अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा, अग्नि को प्रज्वलित करने से धुआं हटेगा, है कि नहीं, अग्नि को प्रज्वलित करने से धुआं एकदम खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को जो कामी है या इच्छाओं में, कामनाओं में, आकर्षणों में, आसक्तियों में फंसे हुए है, हमको ये नहीं करते अभी बोलना चाहिए, अरे क्या आप तो चाय पीते हो, चाय छोड़ दो, अरे क्या आप तो कांदा लहसुन खाते हो, आपसे क्या बात करें, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये धुआं है, ये धुएं को हटाने के लिए आप धुएं को नहीं हटा सकते, आपको अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा, अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि है और इसलिए धुआं है। ये बहुत महत्व की बात है, अग्नि को जितना प्रज्वलित करेंगे उतना धुआं, जितनी हवा मारोगे उतना धुआं उड़ जाएगा, नष्ट होते जाएगा, एक क्षण आएगा कि अग्नि जोर से अच्छे से प्रज्वलित होगा और धुएं का एक कण भी नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जो थोड़ा बहुत चिंगारी उसमें है, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित के तत्व बताइए, कृष्ण के उपदेश बताइए, कृष्ण की कथा बताइए, यह बताने से अपने आप धुआं निकल जाए, है ना। तो इसी प्रकार से यह ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का अग्नि हम प्रज्वलित कर सकते हैं, इसको सात्विक स्तर कहते हैं। बेसिकली भगवान ने जो पहला उदाहरण दिया है, ये सात्विक स्तर के लोगों के लिए दिया है, यह सात्विक स्तर है। क्यों? क्योंकि यहां जो ज्ञान है जो दिव्य ज्ञान है वो एकदम थीन लेयर से ढका हुआ है, एकदम पतला आवरण है, एकदम पतला। अब सोचिए फूंक मारने से जो भाग जाता है आवरण, वो उसका क्या प्रभाव होगा? फूंक मारो, धुआं भाग गया। अर्थात यहां कामनाओं का, काम शत्रु का जो आवरण है एकदम पतला है, वेरी थिन लेयर। नहीं, धुआं कितना पतला होता है, उठा के मेहनत करके रखना है साइड में, कुछ नहीं करना, फूंक गया, उड़ गया धुआं। फुंकर से, एक फुंकर से ये थिन लेयर को हटाया जा सकता है। या फूंक भी मत मारिए, नैसर्गिक पद्धति से जो हवा का छोटा सा झोंका भी यदि आ जाए तो अपने आप धुआं, एक छोटा सा हवा का झोंका यदि आता है तो उससे क्या हो जाता है, वो धुआं निकल जाता है, अपने आप अग्नि प्रज्वलित होता है। इसका कहने का अर्थ यह है भगवान का कि यहां पे जो अग्नि है वो बहुत ही पतली अर्थात बहुत ही छोटे से काम शत्रु से दिव्य ज्ञान को यहाँ पर ढका हुआ है। ऐसा काम शत्रु जिसको सहजता से दूर किया जा सकता है क्योंकि बहुत पतला है। और ये हवा अर्थात क्या, जो फूंक है, ये हवा का झोंका है, ये हवा का झोंका अर्थात साधु गुरु और शास्त्र के उपदेश, इनको सुनना। इसलिए इसमें कहा गया है कि यदि इस धुएं को हटाना है, छोटी सी लेयर को हटाना है, तो हमको क्या करना होगा, श्रवण करना। केवल श्रवण से, थोड़ा बहुत सुनने से, थोड़ा बहुत सुनकर, थोड़ा कीर्तन करने से, थोड़ा सुनो, थोड़ा कीर्तन करो, धुआं हट जाएगा। इट इज दैट इजी। थोड़ा सुनो, थोड़ा कीर्तन करो, श्रवण से काम शत्रु रूपी धुआं उड़ जाएगा, क्योंकि यह जो व्यक्ति है यह सत्व गुण पे स्थित है, सत्व गुण का स्वभाव है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज के पिता कौन थे, हिरण्यकश्यप, महाराक्षस, सारे प्रकार के कामनाओं से भरपूर, और इसी प्रकार से इन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए मंदार पर्वत। तो पत्नी ज्योति इन सारी बातों से बड़ी परेशान हैरान थी, लेकिन उनके भी अंदर बहुत ज्यादा काम शत्रु प्रज्वलित था, बहुत ज्यादा। तो वह भी सोचने लगी कि अभी मैं कहाँ जाऊं, तो इंद्र आ गए, उनको उठा के लेके जाने लगे। इंद्र सोचे कि इसके, यह गर्भवती है और इसका पुत्र होगा तो वो भी वैसे ही होगा, काम शत्रु। परंतु नारद जी बीच में आए और नारद जी ने बड़ी इंद्रदेव से उनको उपदेश दिया, उनको कहा कि आप क्यों ले जा रहे हो, इनका जो आने वाला पुत्र है वो राक्षस नहीं होगा, वो अच्छा भक्त होगा। और इस प्रकार से नारद मुनि ने कथा शुरू कर दी। नारद मुनि की कथा केवल कयाधु नहीं सुन रही थी, नारद मुनि की कथा तो अंदर प्रह्लाद भी सुन रहे थे गर्भावस्था से। वो कथा श्रवण करने के कारण क्या हुआ, गर्भावस्था में ही प्रह्लाद के मन में थोड़ा बहुत यदि कोई काम होता भी तो गर्भावस्था में ही वो क्या हो गया, श्रवण करने से वो धुआ उड़ गया। और जन्मतः, जन्म लेते से प्रह्लाद महाराज क्या करने लगे, दिव्य ज्ञान में स्थित हो गए। जन्मतः ही, जन्म लेते ही दिव्य ज्ञान में स्थित हो गए, नहीं, क्योंकि जो श्रवण उन्होंने किया, श्रवण करने से कामना रूपी धुआ मिट जाता है, उड़ जाता है। तो ये प्रह्लाद महाराज का बहुत ही सुंदर यहाँ पे उदाहरण है। इस श्लोक की या इस पंक्ति की यह मुख्य बात यह है कि यह सत्वगुणी लोगों का लक्षण है। क्या लक्षण है सत्वगुणी लोगों का, उनके अंदर जो कामनाएं होती है बहुत विरल होती है, पतली होती, विरल होती है, उड़ जाती है, पक्की नहीं होती है, हवा के झोंके से उड़ जाती है। दूसरा दूसरी पंक्ति में कहा गया है यथा आदर्शो मलेन च, जिस प्रकार मल से दर्पण ढका हुआ होता है। अब यहां पर जो भगवान तुलना कर रहे हैं वो दर्पण से तुलना कर रहे हैं किसकी, यहां पे दर्पण की तुलना किससे कर रहे हैं, ज्ञान से। पहले पहले ही पंक्ति के पहले शब्दों में भगवान ने कहा था अग्नि, ज्ञान की तुलना अग्नि से की थी और काम शत्रु की तुलना धुएं से की थी, ये सात्विक लक्षण है। इस दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं यदा आदर्शो मलेन च, अर्थात दर्पण की तुलना ज्ञान से कर रहे हैं और काम की तुलना उस दर्पण पे जो मल है उससे, काम की तुलना मल से कर रहे हैं। अब दर्पण की तुलना ज्ञान से कर रहे हैं, इसका बहुत सुंदर अर्थ यहां पे भगवान बता रहे हैं। दर्पण ही क्यों बोला है, दर्पण में हम क्या देख सकते हैं, एज इट इज देख सकते हैं। दर्पण में यदि मैं दर्पण के सामने खड़ा हो गया तो मुझे मैं ही दिखूंगा ना, मेरा शरीर का दर्शन होगा पूरा का पूरा एज इट इज शरीर। मैंने चश्मा पहना है तो वो भी चश्मा पहना हुआ होगा, है ना। मैंने सफेद कपड़ा पहना है तो वो भी सफेद कपड़ा पहना हुआ होगा। सो मेरा ऐसा का ऐसा वास्तविक रूप मेरा दर्पण दिखाता है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान यहां कह रहे ज्ञान भी दर्पण के जैसा है दिव्य ज्ञान, क्योंकि दिव्य ज्ञान भी हमको अपना वास्तविक रूप दिखाता है। वास्तविक रूप क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और इस संसार में दुख क्यों है। दिव्य ज्ञान इन बातों का दर्शन करवाता है, दर्पण हमको हमारे शरीर का दर्शन करवाता है, हमारे शरीर का वास्तविक रूप दिखा देता है, और दिव्य ज्ञान हमको हमारे जीवन का वास्तविक रूप दिखा देता है, हमारे पूरे स्वरूप का वास्तविक रूप दिखा देता है। क्या है स्वरूप, मैं कौन, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और संसार में दुख क्यों है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
आईना है, आईना दिव्य ज्ञान अर्थात आईना। आप समझे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बहुत सुंदर ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे, ड्राइवर के साइड में कांच होता है दर्पण, वो दर्पण में देखता है पीछे से कौन आ रहा है, पीछे से कोई टक्कर लग रही है क्या, साइड में कौन चल रहा है, कितने डिस्टेंस से चल रहा है, कभी कोई मेरे गाड़ी को धक्का मार दे डैश मार दे, मेरे गाड़ी में जितने पैसेंजर है उनको हानि हो जाए, गाड़ी की हानि हो जाए, मेरी हानि हो जाए, इसलिए वो क्या करता है साइड में वो लिखा लगा रहता है ना, हाँ क्या लगा रहता है, लगा रहता है ना, सब देखते हैं ना हम लोग, देखा है ना उसने, सब दिखता है, कोई भी संभाव्य धोखा यदि है तो वो धोखा वो ड्राइवर को दिखता है और वो ड्राइवर क्या करता है सावधानी से सब अपने आप को बचाता है, गाड़ी को बचाता है और पैसेंजर्स को भी जो साथ में बैठे हुए उनको भी बचाता है, बचा सकता है क्योंकि वो देख रहा है। ऐसे ही ये जो आईना दिव्य ज्ञान रूपी आईना लगा हुआ है इसमें यदि हम देखते रहेंगे, ये दिव्य ज्ञान रूपी आईने में बारंबार देखते रहेंगे तो ये संसार का जो दुष्ट चक्र है, ये संसार का जो घात चक्र है, घातक चक्र है, दुष्ट चक्र है, वो बार बार हमको उस आईने में दिखेगा और हम एकदम सही तरीके से अपनी गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे चलाते रहेंगे, क्योंकि हमको संसार के दुखों का, संसार के दुष्ट चक्र का उस आईने में दर्शन होते जाएगा। यदि मुझे ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, संसार में दुख क्यों है, अर्थात दिव्य ज्ञान रूपी आईना ही मैंने लगाया नहीं और मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो संसार के बहुत सारे जो खतरे हैं, जो दुष्ट चक्र है, जो दुख है, वो क्या करेंगे, कोई इधर से डैश मारेगा, कोई उधर से डैश मारेगा, कोई किधर से डैश मारेगा और उसमें होगा क्या, मेरा नुकसान होगा, मेरे गाड़ी का नुकसान होगा, मेरे साथीदार जो है उन्हीं का भी नुकसान होगा। यदि दिव्य ज्ञान एक व्यक्ति के भी पास है परिवार में, उसके पास यदि वो आईना है और वो परिवार को अपनी गाड़ी में बैठा के चला रहा है, अपने लोगों को साथ में लेके चला रहा है गाड़ी, और उसके पास लेकिन आईना लगा हुआ है गाड़ी, वो देख रहा है आईने में दिव्य ज्ञान रूपी आईना, तो क्या कर सकता है, वो सबको बचा सकता है। ऐसा ही जो व्यक्ति इस प्रकार से दिव्य ज्ञान रखता है वो स्वयं की भी रक्षा कर सकता है दुष्ट संसारिक चक्र से, संसार के दुष्ट चक्र से, अपने समाज का और अपने परिवार का भी रक्षा कर सकता है, इतना ही नहीं गाड़ी की भी रक्षा कर सकता है, अर्थात इस भौतिक प्रकृति संसार की भी रक्षा कर सकता है, इतने लाभ हो सकते हैं। मैं कुछ आपको कुछ इस एनालॉजी में गड़बड़ लग रहा है तो आप बोल सकते हैं। यदि एक व्यक्ति के पास दिव्य ज्ञान है तो उस दिव्य ज्ञान रूपी आईने में वो संसारिक खतरा, संसार के दुख, संभाव्य धोखा, आने वाला धोखा सब देख सकते और बचा भी सकते। हम सबके गाड़ी में आईना है ड्राइवर सीट के बाजू में दोनों साइड में, बंद मत रखना उसको, बस उस आईने को बंद मत रखना। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उस आईने पे काम शत्रु रूपी धूल चढ़ी हुई है, काम शत्रु रूपी धूल इतनी बुरी तरह से चढ़ी हुई है। अब ये धुएं की जैसी होती है, क्या धुआं तो हवा से उड़ जाता है, ये जो धूल है ये हवा से उड़ती है, पक्की बैठी कैसी है, पक्की है बैठी, बहुत ज्यादा पक्की धूल है बैठी। यहां जो भगवान कह रहे हैं ये राजसिक स्तर के व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, राजसिक व्यक्ति जो होते हैं उनका जो काम प्रभाव होता है, उनके अंदर जो कामनाएं होती है वो इतनी पक्की होती है, पहले की तुलना से, वो जो सात्विक व्यक्ति होता है उसकी तुलना से ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर जो कामना है, जो काम भाव है वो कैसा है, थोड़ा जड़ है, हवा फू करने से। तो क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो काम शत्रु है ये मल के रूप में आक्रमण करता है, मल है, डस्ट यानी मल, ये काम शत्रु मल की, मल के रूप में आक्रमण करता है, और ये उसकी दूसरी यानी ऊपर की स्थिति है, पहली स्थिति जो है पतली पतली स्थिति थी, उड़ने वाली स्थिति थी, लेकिन ये थोड़ी ग्रॉस हो रही है, थोड़ी कामनाएं जो है यहाँ पे थोड़ी सेटल होती जा रही है, अर्थात वो जो कामनाएं पहले उड़ने वाली थी ये अभी बैठ गई है, घनत्व हो रहा है, वो घनीभूत हो रही है कामनाएं, डस्ट के रूप में आ रही है, ये दूसरी स्थिति है, ये पहली स्थिति से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां जो काम शत्रु है वो काम शत्रु उस दर्पण को इस प्रकार से ढक देता है कि हवा भी काम नहीं करती, हवा का झोंका भी काम नहीं करता। हमने पहली स्थिति की जब चर्चा की, पहली स्थिति में क्या होता है, पहली स्थिति में श्रवण करने से, श्रवण रूपी हवा से धुआं उड़ जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। पहला जो स्थिति था वो ध्यान से समझेगी कि ये हमारे लिए सब हमारी दशा है सर। पहले स्थिति में क्या था कि श्रवण करने से धुआं अग्नि प्रज्वलित होता और धुआं उड़ जाता हवा के झोंके से। परंतु यदि पहली स्थिति में लापरवाही बरत दी, भगवान का यहां कहने का अर्थ यह है कि पहले स्थिति में आप हवा के झोंके से काम चला सकते थे, अर्थात श्रवण करके काम शत्रु को नियंत्रित कर सकते थे। पहली स्थिति में क्या कर सकते थे? श्रवण करके काम शत्रु को नियंत्रित कर सकते थे, परंतु लापरवाही बरती तो वो सेकंड स्टेज आ गई। कोई भी बीमारी का फर्स्ट स्टेज में इलाज करो तो जल्दी दुरुस्त हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में इलाज नहीं करोगे तो सेकंड स्टेज में जाएगा वो। तो भगवान कह रहे हैं पहला स्टेज अच्छा था, केवल श्रवण से काम चल सकता था, हो जाता था, काम शत्रु का दमन होता था, परंतु लापरवाही बरत दी और लापरवाही बरतने के कारण क्या हुआ, वो काम शत्रु जो उड़ के जाने वाला था वो वहीं स्थित हो गया, घनीभूत हो गया। अब वो मल के रूप में आ गया और मल के रूप में आगे दर्पण पे चिपक गया। अब चिपक गया, अब कितनी भी हवा मार, अभी कितनी भी श्रवण करो, कितना भी श्रवण क्या होगा, श्रवण करते करते ये होगा है कि नहीं। ज्यादातर कथाओं में, कोई भी कथा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, कथा शुरू होते से ही क्या होने लगता है, हाँ यस यस यस, फिर दूसरा जो हाँ क्यों कि यहां पे जो वर्णन भगवान ने किया है, पहला जो स्थिति था श्रवण का, वो श्रवण से यदि हम इस धुएं को उड़ा देते थे तो क्या होता था, अग्नि बहुत प्रज्वलित रहता, परंतु थोड़ी सी लापरवाही हुई उस समय, उसको उड़ाने में लापरवाही हुई, काम शत्रु प्रबल हो गया, घनीभूत हो गया। अब वो क्या करता है, श्रवण की बस की बात नहीं रहेगी, अभी श्रवण की बस की बात नहीं, क्योंकि श्रवण होता ही नहीं, श्रवण करने के लिए पूरी तैयारी से बैठते, लेकिन या तो नींद आती है नहीं तो कहीं ना कहीं संसारिक विचारों से त्रस्त हो जाते हैं, इतने संसारिक विचार, इतने संसारिक विषय मन में आ जाते हैं कि उससे त्रस्त हो जाते हैं, है? श्रवण के बस की बात नहीं रही है, अभी ऊपर की स्टेज, सेकंड स्टेज में आ गई बीमारी, मतलब काम शत्रु और प्रबल हो गया यहाँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय है, धुलाई करनी पड़ेगी ना, काश पे यदि डस्ट बैठ गई तो कितनी भी हवा मार होगा नहीं, धुलाई करनी पड़ेगी। धुलाई के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, साबुन चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं, क्योंकि पक्का मर बैठ गया, साबुन के बदले कभी कभी एसिड चाहिए, क्योंकि इतना पक्का बैठा हुआ होता है कि साबुन से काम नहीं होता, एसिड लेना पड़ता है, ऐसा चाहिए है ना। तो शास्त्र में कहा गया है पानी, वस्त्र और साबुन, अर्थात अध्ययन, साधु संग और आचार्य का उपदेश, इसमें से कुछ भी एक से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी एक से शुरुआत कर सकते हैं। अध्ययन, साधु संग, अध्ययन अर्थात स्वाध्याय, अध्ययन करो, अध्ययन, अध्ययन शास्त्र का अध्ययन करो, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ो, अध्ययन करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए और उपदेश। संग इसलिए करना चाहिए उपदेशों का पालन करने, मुस्ता संग किया और उपदेशों का पालन नहीं किया तो क्या फायदा, संग इसलिए करना चाहिए कि उपदेशों का पालन, तो आचार्यों के उपदेश। ये पानी, साबुन और वस्त्र है, इससे पोछना पड़ेगा, क्या क्या, अध्ययन, साधु संग और गुरु का उपदेश का पालन, इसमें से कोई भी एक साधु शुरुआत कर सकते, बेस्ट इज उपदेशों के पालन से शुरुआत करना चाहिए, उपदेशों के पालन से शुरुआत करनी चाहिए। यदि हम आध्यात्मिक विधियों का पालन करते हैं जो गुरु परंपराओं में हमको बताई गई है, तो उनको उनका पालन करते 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 साधु संग करते करते अध्ययन करते करते ये जो मल है ये धीरे धीरे निकल सकता है। और ये आध्यात्मिक विधियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि जो बताई गई है वो है नाम संकीर्तन। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। जोर से बोलिए, श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो मट्टी है इसको यदि साफ करना है दर्पण के ऊपर की क्या करना होगा, संकीर्तनम संग कीर्तन अर्थात भक्तों का संग करना होगा, नाम जप करना होगा, भक्तों के साथ कीर्तन करना होगा। यह चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर विधि बताई गई है। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में पहला श्लोक में बहुत सुंदर प्रकार की विधि बताई है कि इस प्रकार से इस धूल को, क्योंकि धूल बहुत पक्की है, मल है, इसको राजसिक स्तर कहते हैं। पहला कौन सा था, थोड़ा सा श्रवण करने से सात्विक प्रवृत्ति के लोगों का तुरंत मति लग जाता है, थोड़ा हाँ बहुत बढ़िया तुरंत हरे कृष्ण। कोई कई दिनों बाद आते श्रवण करने से काम चलता ही नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी आध्यात्मिक विधियों का और उपदेशों का पालन करना पड़ता है तब जाके। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर सेल्फिश एटीट्यूड बहुत ज्यादा आता है, स्वार्थ बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अहंकार बहुत रहता है। राजसिकता के लक्षण क्या है, ईगो अहंकार आकर्षण ग्रॉस अटैचमेंट्स संसारिक एकदम प्रचंड अटैच प्रचंड आसक्त ग्रॉस अटैचमेंट्स ईगो सेंट्रिक और सेल्फिश डिजायर्स। सात्विक व्यक्ति में थोड़ी बहुत सेल्फिश डिजायर्स होती है, जो काम शत्रु जो उड़ने वाला है ना उसमें केवल स्वार्थ थोड़ा होता है और धीरे धीरे वो हवा से उड़ जाता है। अब इसमें स्वार्थ तो है ही, पहले का डिजायर तो है ही, सेल्फिश डिजायर प्लस क्या आ गया, ईगो आ गया और ग्रॉस अटैचमेंट आकर्षण आसक्ति, ये राजसिकता के लक्षण है। इसलिए ये हवा से नहीं उड़ेगा, इसको बिल्कुल विधिवत स्वच्छ करना पड़ेगा, एकदम तरीके से स्वच्छ करना पड़ेगा, बैठ के आराम से घिस के एकदम अर्थात तरीके से विधिवत तरीके से इसको स्वच्छ करना होगा। और वो भी आज स्वच्छ किया आपने गाड़ी का आईना तो हो गया परमानेंट सोल्यूशन, रोज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट एफर्ट्स। राजसिक स्तर के व्यक्ति के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स नियमित प्रयत्न करना पड़ेगा, अर्थात रोज काज को नहीं पड़ेगा करना पड़ेगा कि नहीं, सीधी सीधी सिंपल भगवान बोल रहे, हमारी बात नहीं है, यहां भगवान बोल रहे हैं, आप सोचिए भगवान बोल रहे हैं रोज अपने गाड़ी का काज साफ करो, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है बहुत भयंकर, और अपना हो सकता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंच सकता है, पूरे संसार को नुकसान हो सकता है उससे। रोज अपने गाड़ी का काज स्वच्छ करना चाहिए, अर्थात रोज अपने दिव्य ज्ञान के ऊपर जो मैल बैठा हुआ है कौन सा, ग्रॉस अटैचमेंट्स प्रचंड आसक्ति अहंकार और स्वार्थ, ये डस्ट को नियमित रूप से हल्का कीजिए साफ कीजिए। और वो कैसा करना, नियमित रूप से अर्थात एक दिन 64 माला, इतना रगड़ रगड़ के काज को साफ किया एक दिन दुनिया भर के एसिड और साबुन और सब लगा रहा है, एकदम बहुत ही एकदम टिन कर दिया इसको
और फिर 4-6 महीना देखे भी नहीं, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। नियमितता से करना होगा, रोज अपने नियम से रोज करना होगा, जो भी करना है रोज करना होगा। यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण है ध्रुव महाराज का। प्रहलाद महाराज को थोड़ी ही बातें कहनी थी बस, थोड़ा बहुत स्वार्थ यदि होता प्रहलाद महाराज का कि मैं राजपुत्र हूं, तो राजपुत्र के इससे जो भी स्वार्थ होने जा रहा था उसको नारद मुनि ने केवल उनको कथा कह दी, उन्होंने श्रवण किया, वो स्वार्थ निकल गया। परंतु ध्रुव महाराज में क्या बात है, ध्रुव महाराज अपने माता से एकदम व्यथित हो गए, तो उनके अहंकार को स्पर्श हो गया, अहंकार एकदम जागृत हो गया, मुझे ऐसा कहा, मेरा अपमान हुआ, मुझे चाहिए। देखो ग्रॉस अटैचमेंट, मुझे राज्य चाहिए, पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, मान अपमान, मेरा अपमान हुआ है, यानी अहंकार, ग्रॉस अटैचमेंट, मेरा चाहिए, मुझे चाहिए, मैं और मेरा अर्थात स्वार्थ, तीनों बातें आ गई राजसिक गुण की। इतना उनको चाहिए 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 करने चाहिए के कारण, राजसिक गुण के कारण किसी का भी श्रवण करने के इसमें नहीं, वो चले गए। माता ने कहा जंगल में जाओ, जंगल में चले गए प्राप्त करने के लिए सब बात। जब जंगल में गए तो नारद मुनि का दर्शन हुआ और नारद मुनि से मिले, और नारद मुनि तो समझ गए थे, नारद मुनि उनको समझा रहे हैं, नारद मुनि उनको बहुत समझाए, आपको ये देखना है, ये पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है। तो 4 स्कंद में 8वें अध्याय के 25वें श्लोक के आगे से पढ़िए, नारद मुनि ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं। नारद मुनि ध्रुव महाराज को समझा रहे कि अरे बाबा ये क्या करते हो, कोई भी व्यक्ति का मान अपमान होता है, किसी की भी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है, तो ये इसके प्रारब्ध कर्म है, ये कर्म धर्म के संयोग है, कर्म के अनुसार उसको ये प्राप्त होता है, तुम इतने व्यथित क्यों होते हो, तुम थोड़ा सा ज्ञान की बात को समझो, तुम अज्ञान की दिशा में जा रहे, तुम इस बात को छोड़ो, तुम समझो ये जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारी माता ने नहीं किया है, सुरुचि ने नहीं किया है, वो तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म है। उस कर्म बहुत सुंदर प्रवचन किए नारद ने, 4, 34 स्कंद के 8वें अध्याय का 25 या 26, 27 के आगे के श्लोक से, सारे आगे 5-7 श्लोक से समझा है, बहुत सुंदर। ध्रुव महाराज ने पूरा सुना और फिर नारद जी को कहते हैं हे मुनि श्रेष्ठ, 9वें अध्याय में पढ़िए इसको, बहुत सुंदर वर्णन है, हे मुनि श्रेष्ठ आपने इतनी सुंदर कथा की, इतनी सुंदर ज्ञान की बात की, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा ये तो ज्ञानी लोगों के लिए, मेरे पास कहाँ ज्ञान है, मैं तो बालक हूं, ये तो बड़े व्यक्तियों के लिए जो ज्ञानी है उनके लिए है, मैं तो बालक हूं, मुझे ये सब आपकी बातें समझ में नहीं आती। अर्थात श्रवण करने का कुछ लाभ हुआ, और प्रहलाद महाराज ने खाली श्रवण किया, ज्ञान प्राप्त हो गया, भक्ति में स्थित हुए, काम शत्रु को हरा दिए। अब इन्होंने श्रवण किया, लाभ हुआ, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे ये तो मेरे लिए थोड़ी है, राजसिक व्यक्ति को आप इस प्रकार से उपदेश द्वारे हरे कृष्ण बोलो, मंदिर में आओ, एकादशी व्रत करो, वो ये आपके लिए, हमारे लिए थोड़ी होता है, हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी होता है, हम तो वैसे ही अज्ञान जैसे बोलते हैं, वैसे ही बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से ध्रुव महाराज ये कह रहे हैं कि ये सब आप जो बातें कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें हैं, ज्ञानी बातें हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए बात नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो बालक हूं, मुझे तो ये चाहिए। फिर नारद मुनि ने समझाया, फिर नारद मुनि के ध्यान में आई ये बात कि ये राजसिक स्तर पे है, इसके लिए तो विधिवत आध्यात्मिक प्रक्रिया अर्थात आध्यात्मिक विधि का, या उसको भी आप साधन भक्ति कह सकते हैं, इनको तो मुझे अभी साधन भक्ति सिखानी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा ठीक बात है, तुमको जो अवश्य चाहिए जो भी है जैसा भी है, तुम भगवान को प्राप्त करो तो सब प्राप्त होगा, भगवान को प्राप्त करोगे तो सब ये प्राप्त होगा, भगवान को कैसे प्राप्त करोगे, भगवान को प्राप्त करने की कुछ विधि होती है, विधि ये होती है क्या है, एक जगह पे पद्मासन में बैठ के स्थित हो जाओ यमुना के तट पे, प्राणायाम करो, ध्यान धारणा प्राणायाम करो, प्राण से अपने मन को स्थिर करो, और अपने मन को स्थिर करने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहो। क्या किया उन्होंने, पहले ज्ञान श्रवण करने का चांस दिया नहीं, अभी क्या किया उन्होंने, साधन भक्ति नियमित रूप से आध्यात्मिक विधि। प्रभुपाद जी ने यही कहा है कि आध्यात्मिक विधियों का पालन करके, प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य। तो क्या करना पड़ेगा, एकदम सटाक से श्रवण जा नहीं रहा है अंदर, अभी बहुत सारी विधियां है भाई, आप क्या करो, आप एकादशी का व्रत करो, मंदिर में सुबह आओ, आरती अटेंड करो, आरती मंगल आरती करो, दर्शन आरती करो, फिर क्या करो, फिर मंदिर को चार परिक्रमा लगाओ, और फिर क्या करो, चरणामृत लो, भगवान के गुरु महाराज, परम गुरु महाराज, गुरु परंपरा, गौर निताई, जगन्नाथ जी, श्री राधा कृष्ण जी, इनको सबको विधिवत दंडवत प्रणाम करो उनके, ये सब भक्ति के जो विधि है ये विधि करनी होगी। तो राजसिक स्तर पे जो व्यक्ति है इनको क्या कर बताया जाता है, साधन भक्ति, नियमित नियम से ये सब करो। तो ध्रुव महाराज को वो बात थोड़ी डाइजेस्ट हुई, ज्ञान वाली बात एकदम से नहीं डाइजेस्ट हुई, उनको विधि वाली बात डाइजेस्ट हुई, विधिवत वो बैठ गए, कहाँ बैठ गए, यमुना के तट पे, मधुबन में, मथुरा में, है ना, ध्रुव टीला कहते हैं उसमें, उसको ध्रुव टीले पे बैठे और साधन भक्ति के माध्यम से विधिवत आध्यात्मिक क्रियाएं उन्होंने की, है ना। तो जब उन्होंने विधिवत क्रिया पूर्ण की और भगवान उनको प्रसन्न हुए, तो नवे अध्याय में फिर ध्रुव महाराज बोलने लगे, भगवान को प्रसन्न किए, भगवान उनको प्रसन्न हुए, भगवान का दर्शन हुआ और भगवान की उनकी चर्चा हुई। तो भगवान को क्या कहते हैं, दर्शन होने के पश्चात, दर्शन होने के पश्चात कहते हैं, हे अनंत, हे भगवान, आप तो मुझे केवल एक ही कृपा कीजिए, एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मुझे जीवन भर नित्य उन शुद्ध हृदय वाले या शुद्ध भक्ति वाले भक्तों का संग दो, सत्संग दो, बस इतना ही करो, कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट गुड एसोसिएशन, हम बोलते हैं सब लोग एसोसिएशन को अच्छा एसोसिएशन, वी वॉन्ट गुड क्वालिटी एसोसिएशन। तो ध्रुव महाराज ने भी यही कहा, आई वॉन्ट क्वालिटी एसोसिएशन फॉर एवर, नित्य के लिए, हे भगवान मुझे क्या करो, मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए, नित्य संग दीजिए, जिनका आप में, जिनकी आप में सुदृढ़ भक्ति है, डामाडोल भक्ति नहीं, जिनकी आप में आपके प्रति सुदृढ़ भक्ति है, डामाडोल नहीं, ये मांगते हैं वही ध्रुव महाराज बताए। तो राजसिक स्तर के व्यक्ति को आप इस प्रकार से विधि बता सकते हैं, आध्यात्मिक विधियां बता सकते हैं या साधन भक्ति बता सकते हैं। उससे होगा क्या, वो नियमितता से सारी विधियां करनी होती है, अर्थात नियमितता से काज को रगड़ना पड़ता है, है? नियमितता से काज को धोना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है नियमितता से, उसको इंटरेस्ट भी आता है राजसिक व्यक्ति। तो इस प्रकार से तीसरा बात यहाँ पे, तीसरा स्तर बताया गया है, यथा उद्वेनावृतो गर्भ, अर्थात जिस प्रकार शिशु गर्भ से ढक जाता है। अब यहां पे ज्ञान की तुलना भगवान किससे कर रहे हैं, नींद आ रही क्या, नहीं है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां पे भगवान दिव्य ज्ञान का तुलना शिशु से कर रहे हैं और काम शत्रु की तुलना गर्भाशय से। अब ये तामसिक स्तर, काम शत्रु के जो शुरुआत में कहा गया है कि काम शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कौन सी विधि से करता है, तो ये विधिया है काम शत्रु के हमारे ऊपर आक्रमण करने की, जैसे जैसे भगवान ने कहा है, जैसे शिशु के शिशु गर्भावस्था में रहता है, तो शिशु अर्थात दिव्य ज्ञान और गर्भाशय अर्थात काम शत्रु, तुलना है। जिस प्रकार गर्भाशय में शिशु एक छोटे से कोने में एकदम जकड़ कर पड़ा रहता है, कोई हलचल नहीं है। हलचल है भी तो वही की हुई जकड़ करे, फ्री नहीं, जकड़ा हुआ है। और उसी प्रकार ये काम शत्रु क्या करता है, ज्ञान को जकड़ देता है, एकदम बांध देता है। अब आप देखिए पहले की दोस्ती थी कैसी थी। पहले काम शत्रु ने ज्ञान को लगभग फ्री ढीला छोड़ा हुआ था, मतलब फूक मार दे तो निकल जाएगा। सात्विक व्यक्तियों में काम शत्रु का जो प्रभाव होता है कैसा, धुआं, मतलब हवा मारो निकल जाए, इतना हावी नहीं होता है काम। सात्विक व्यक्ति के ऊपर इतना काम हावी नहीं होता है, उसका दिव्य ज्ञान कभी भी उपयोग में आ सकता है, फटाक से वो काम शत्रु भाग सकता है, नष्ट हो सकता है। दूसरे स्तर में काम शत्रु थोड़ा बैठ गया, आके बैठ गया गले पे मतलब आके बैठ गया, थोड़ा और ज्यादा पावरफुल हुआ, लेकिन उसको भी कपड़े से साफ कर सकते हैं, जब चाहे तब कपड़ा लेके साफ कर सकते हैं। रेगुलर साफ करते तो अच्छा ही है, अपने हाथ में है तो अपन साफ कर सकते हैं। तीसरा जो स्तर है यहां क्या कर सकते, बांध दिया है प्रभु, बांध दिया है। कितना भी घिसो, कितना भी हवा मारो, 9 महीने के पहले बाहर नहीं आएगा। अर्थात दिव्य ज्ञान को इतना जकड़ के रख दिया है काम शत्रु ने, इतना बांध के रख दिया है कि आप कितनी भी चेष्टा करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, दिव्य ज्ञान काम शत्रु छूटे गए। ये जो तीसरी स्थिति है ये दूसरे से भी खतरनाक है, यानी पहले से दूसरा खतरनाक, दूसरे से तीसरा खतरनाक। ये तामसिक स्तर है, यह तामसिक स्तर, तमस के माध्यम से काम शत्रु आक्रमण करता है, सत्व के माध्यम से भी आक्रमण करता है, रजस के माध्यम से भी और तमस के माध्यम से भी आक्रमण करता है। यदि दूसरी स्थिति में व्यक्ति जब था, उस दूसरे स्थिति में यदि व्यक्ति बराबर रेगुलरली अपना काज साफ करता, रेगुलर, जैसे ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से इंस्ट्रक्शन लिया, उपदेश लिया, उस विधि को श्रवण किया, विधि को प्राप्त किया और उसका आचरण किया, पालन किया, आचरण मिला है, ऐसे ही हम यदि करते, साधु संघ करते, आज्ञाओं का उपदेश का पालन करते, हाँ, तो ये नौबत नहीं आती, बंधे नहीं जाते, बंधन में नहीं आते। अभी क्या हो गया, हमने उस टाइम लापरवाही की, अभी थर्ड स्टेज में आ गए, बीमारी जो है अभी थर्ड स्टेज में आ गई। फर्स्ट स्टेज में आप रेमेडी डॉक्टर के पास जाते, इलाज करते, अच्छी वेल एंड गुड, हेल्दी रहते, ठीक है। थर्ड सेकंड फर्स्ट स्टेज गई, सेकंड स्टेज में तो करो, उसमें भी लापरवाही बरतती, उसमें भी लापरवाही बरतने के कारण क्या हुआ, अब थर्ड स्टेज आ गया। अब थर्ड स्टेज में तो इलाज ही नहीं होता ना थर्ड स्टेज में इलाज ही नहीं होता है, जो होगा अभी 9 महीना बर्थ होगा, 9 मंथ लगेगा, अर्थात बंद गए हो, कोई उपाय नहीं है। जब कृष्ण की कृपा होगी, जब भगवत कृपा होगी और भक्तों की कृपा होगी तब छूट सकते हो समय के पश्चात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। परंतु यह भी बात ध्यान में रखिए, जो दूसरे स्थिति में हम कह रहे कि लापरवाही नहीं बरतते तो अच्छा होता, परंतु जो व्यक्ति तीसरे स्थिति में पहुंच गया है या पहुंचने वाला है, वो तीसरी स्थिति तो समझो पागलपन है। ये जो तीसरी स्थिति है ना, ये काम शत्रु जी इस प्रकार से दिव्य ज्ञान को बांध देता है कि व्यक्ति के अंदर पागलपन आ जाता है, बिकम ए मैड। भौतिकता के प्रति, स्वार्थ के प्रति, मान अपमान सम्मान प्रतिष्ठा के प्रति पागलपन आ जाता है, कम मैड। तो ये पागलपन की अवस्था में कोई सफाई नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति पागल है, कैनॉट क्लीन, हो ही नहीं सकता। उस जिसका दिव्य ज्ञान ढका हुआ है पूरी तरह से, बांध दिया, ढका नहीं बांध दिया है रस्ते से, पूरा ऐसा बंधा हुआ है गर्भाशय में जिस प्रकार से, कुछ नहीं हो सकता। मैडनेस, मैडनेस। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? उनके लिए एकमात्र ही उपाय यह है कि वो सारे कार्यों को बंद करें या थोड़ा शांत रहेंगे, कुछ नहीं, बस शांत रहे, कुछ नहीं कर सकते, समय बीतने दें। जब समय बीतेगा, समय बीतेगा, समय बीतेगा, समय पूर्ण हो जाएगा, तब जाके ये ज्ञान थोड़ा खुल जाएगा, बंधित बंधित अवस्था से मुक्त अवस्था में या खुली अवस्था में आ जाएगा। जैसा शिशु का जन्म हो जाता है, 9 महीने तक बंधा हुआ रहता है, और फिर जब इसका 9 महीने के पश्चात ही जन्म होता है, पहले होता ही नहीं है, और जब उसका जन्म होता है तब ये थोड़ा बहुत खेल जाता है, खुल जाता है। उसी प्रकार से कोई यदि इस अवस्था में, तामसिक अवस्था में है, तो उसने क्या करना चाहिए? उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं देना चाहिए। उसने भी अपने कार्यकलापों में थोड़ा सा कंट्रोल करते 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 समय जाने देना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतेगा, समय बीतेगा, ज्ञान हल्का हल्का होते जाएगा, यानी शिशु का जन्म का समय निकट आते जाएगा। तो जब ज्ञान पूरा ओपन अप हो जाएगा, तब बंधन अवस्था से दूर होगा, तब काम शत्रु के ऊपर ये नियंत्रण कर सकता है। परंतु जो समय लगेगा वो तो फिक्स है उसके लिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
अर्थात ये जो 9 महीने का शिशु का अवधि होता है, ये तो उसके लिए दंड की अवस्था है ना, है कि नहीं? दंड की अवस्था है, नहीं तो दंड है ना, उसको बड़ी भयंकर अवस्था है गर्भाशय में। ऐसे ही दूसरे स्टेज में लापरवाही बरती, साफ सफाई की नहीं है, क्लीन करना था किया नहीं है, अभी दंड के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं, दंड ही देना पड़ेगा अभी आपको, अभी हमको दंड ही मिलेगा। दंड क्या होगा? प्रताड़ना। दूसरी अवस्था से ठीक नहीं हुए तो अब क्या होगा? अब दंडित ही होना पड़ेगा, दंड ही हमको भोगना पड़ेगा। और वो दंड है जो समय, जितने समय तक हम उस अवस्था में रहते हैं, वो समय हम जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म बड़े शांति से और नियंत्रित अवस्था में करना चाहिए। धीरे धीरे समय जाएगा और हमारा दिव्य ज्ञान जागृत होगा या मुक्त अवस्था में आएगा, और काम शत्रु के ऊपर नियंत्रण। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
उसका उदाहरण है नल कुबेर और मणिकुबेर। ये तामसिक स्तर है, तामसिक व्यक्ति के का दिव्य ज्ञान पूरी तरह से बंधा हुआ, पूरी तरह से बंधा हुआ, पूरी तरह से। और उसको यदि सुधारना चाहते हो तो भगवान या भक्तों के पास दंड के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं, उसको दंडित कुछ समय तक दंडित ही करना पड़ता है, और दंड भोगेगा तभी जाके तामसिक से राजसिक स्तर पे और राजसिक से सात्विक स्तर पे। मणिग्रीव नलकुबेर इन्होंने क्या किया? तामसिक स्तर पर नारद मुनि का अपमान किया। कैसे अपमान किया? वो बड़े विचित्र अवस्था में स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे थे ऐसा समझिए, और नारद मुनि वहां पे आए जा रहे, वहां पे आ गए तो भी एकदम नग्न अवस्था में स्विमिंग पूल में ना स्नान कर रहे, और बड़ी विचित्र हाव है, कामुक अवस्था में थे, और नारद मुनि का सम्मान भी नहीं किया। इतना प्रबल काम शत्रु कि जरा भी ज्ञान, उनका ही ज्ञान उनके काम में नहीं है, उनका ही ज्ञान, उनको ज्ञान नहीं था ऐसे भी नहीं, उनका ज्ञान था लेकिन पूरी तरह से बंधा हुआ था, बंधन अवस्था। तो नारद मुनि समझ गए कि इतना काम शत्रु जिसका प्रबल होता है उसको तो वृक्ष वनस्पति जैसा ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस, हमने पहले कहा था आवृत चेतना संकुचित चेतना स्मरण है, इसका ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान अर्थात चेतना है, कॉन्शियसनेस ही, इसका कॉन्शियसनेस तो एकदम पेड़ के जैसा है, नग्न अवस्था में खड़ा है, तो ये तो वनस्पति के जैसा है। और ये अवस्था संकुचित चेतना ये तो तामसिक स्तर है। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनको तुरंत श्राप दिया, वृक्ष बन गए, वृक्ष नग्न अवस्था में खड़े रहते हो, वहां ज्ञान का कोई आवश्यकता है नहीं, वृक्ष को क्या ज्ञान चाहिए। तो वृक्ष बन गए। अब फिर नारद मुनि को प्रार्थना करने लगे, तो नारद मुनि ने उनको उपशाप दिया, उनको कहा कि ठीक है भगवान आएंगे तुमको मुक्त करेंगे, लेकिन फिर भी तुमको दिव्य जगत के 100 वर्ष तक, समझ इतने वर्षों तक पेड़ बना रहना पड़ेगा, 100 मिनी इयर्स पेड़ बन के रहना पड़ा। वो समय का वो जो दंड है, तामसिक अवस्था में यदि हम पहुंच गए तो हमारी हमारे ज्ञान की जागृति या हमारे दिव्य ज्ञान का हमको अनुभूति दंड के बाद ही होती है, हमको दंड आवश्यक हो जाता है और फिर हमको दंड प्राप्त होते हैं। तो कितना भी प्रयास कर लीजिए तामसिक व्यक्ति को बदल नहीं सकते, कितना भी प्रयास कर, उसको बदलने के लिए समय की आवश्यकता होती है। तामसिक व्यक्ति नहीं बदल सकता है, समय की आवश्यकता उसको होती है, और समय के साथ साथ भक्त और भगवान की कृपा भी मस्ट है, अवश्य समय, भक्त और भगवान इन सब की कृपा चाहिए, तभी जाके तामसिक व्यक्ति में उपलब्धि हो सकती है। इस प्रकार से हमने देखा फर्स्ट स्टेज में, पहला स्टेज क्या है, सात्विक, सात्विक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सात्विक स्तर पे काम शत्रु को नियंत्रित करना है, सात्विक स्तर पे तो क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन। दूसरे स्टेज में राजसिक, राजसिक स्तर पे यदि काम शत्रु है तो क्या करना चाहिए, साधन भक्ति अर्थात नियमित अनियमित उठना, नियम से उठना, जप करना, एकादशी करना, मंदिर में जाना, सब आध्यात्मिक विधियां। तीसरा है तामसिक, तामसिक स्तर पे यदि काम इतना तीव्र हो गया कि काम से, तो क्या करना चाहिए, भक्त भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम,
श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये काम शत्रु जो है, ऐसा मत सोचिए कि हम तो सात्विक स्तर पे, हमको क्या करेगा, हमको भी धुएं के रूप में ग्रसित कर सकता है। कोई सोचेगा हम तो राजसिक है, इतना थोड़ी बुरे है, तो उसके ऊपर भी धूल मिट्टी बैठ सकती है और बाद में तामसिक स्तर पे जाके उसको दंडित होना पड़ सकता है। हरे कृष्ण।